मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 29 जून 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं विरमणि कुमार सिंह, गांव इनका है हौजपुर, जिला वैशाली, बिहार से हैं। सुमित कुमार झा, आपका गांव है पारसुनी, जिला मधुबनी, आप भी बिहार से हैं। खुशबू रानी, पटना बिहार से। तिलक चरण, श्योपुर मध्य प्रदेश से। विकास यादव, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। रोहित कुमार महतो, आपका गांव है निश्चितपुर, जिला धनबाद, झारखंड से। और शुभम ठाकरे, आपका गांव है खंडासा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। तो वीरमणि, सुमित, खुशबू, तिलक, विकास, रोहित और शुभम, आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाओं से अवगत कराना होता है। तो सूचना ये है फ्रेंड्स कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन आपको कल प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी और साथ ही साथ पढ़ने के लिए कुछ दूसरी चीजें भी हम लोग शनिवार को आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र के 2 आर्टिकल्स होते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और दूसरा योजना के भी 2 आर्टिकल्स होते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और ये मैं बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश, जैसे कुरुक्षेत्र का एक आर्टिकल हिंदी का है और एक इंग्लिश का है, तो जरूरी नहीं कि वो उसी का ट्रांसलेशन ही हो, है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर एक वीकली क्वेश्चन होता है मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर और हमारे जो क्लास स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं आपसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह या इसे कह लीजिए नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। लेकिन कुछ आइए उससे पहले हम न्यूज के दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं। रेडियो न्यूज में आपने एक वाक्य सुना होगा प्रधानमंत्री जी का और ये हेडलाइन है, हमारे रेडियो न्यूज की हेडलाइन का पहला समाचार है, पहला तो यानी कि महत्वपूर्ण है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम जो है जो संत कबीर का जो समानता का सिद्धांत है, उस समानता के सिद्धांत के आधार पर, उन कहने का मतलब यह था कि अपने राष्ट्र का विकास करेंगे, अपने राष्ट्र को बनाएंगे। कबीरदास जी का संदर्भ उन्होंने क्यों लिया आपको मालूम है, उसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, सिविल सर्विस से इसका क्या लेना देना है मित्रों, बस आपको ये क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। कभी कभी चीजें डायरेक्ट नहीं होती हैं और सच पूछिए तो मुझे तो ये लगता है कि सिविल सर्विस में ज्यादातर चीजें इनडायरेक्ट ही होती हैं, इनडायरेक्ट ज्यादातर चीजें होती हैं। जैसे संत कबीर, अब मगहर में उनकी एकेडमी बनी, अब आप देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से लगातार अखबार में, न्यूज में संत कबीर के बारे में चर्चा हो रही है, अखबारों में आर्टिकल्स आने भी शुरू हो गए, यहां तक कि अखबारों में एडिटोरियल कमेंट भी संत कबीर के बारे में लिखे गए। तो जो संत कबीर के बारे में लिखे गए तो देखिए वो उनके कवि व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, यहां आपको ध्यान देना होगा। आपको कवि संत के कवि कबीर के बारे में नहीं पढ़ना है, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, एक सामाजिक व्यक्ति कबीर के बारे में पढ़ना है या एक समाजशास्त्रीय कबीर के बारे में पढ़ना है कि कबीर का समाजशास्त्रीय विचार क्या रहा है, मूलभूत विचार क्या रहा है। तो जब आप मूलभूत विचार पर जाएंगे, देखिए उन्होंने धर्म के बारे में बातें की, फिलॉसफी की बातें की, जाति व्यवस्था का खंडन किया, इस तरह से ढेर सारे इश्यूज पर उन्होंने बातें की हैं। लेकिन ये जितनी भी आपको छोटी छोटी नदियां और ये नाले दिखाई दे रहे हैं, अंततः तो समुद्र में जाकर के मिलते हैं ना। तो कबीर ने ये जितने भी विचार, जितने भी तरह के विचार दिए हैं, वो मिलते किस समुद्र में है। तो जब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको लगेगा यार समुद्र तो समानता का ही है, समानता का ही है कि सभी व्यक्ति समान हैं, हर व्यक्ति समान है, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं भी रहता हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति समान है, जिसे गुरु नानक देव ने कहा, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सभी का जन्म एक ही प्रकाश से हुआ है, तो उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबको जन्म देने वाला एक ही प्रकाश है, एक ही ईश्वर है। कबीर की पूरी फिलॉसफी इसी पर है, राइट। तो जब आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आप अपने संविधान को देखिए, संविधान को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, संविधान के फैब्रिकेशन को समझिए, संविधान की आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए, पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को आप देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स का अगर आप विश्लेषण करेंगे कि जो हमारे इतने सारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य क्या है, जो मैंने कबीरदास की तरह कहा, तो आपको पता लगेगा कि दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और वो है समानता और स्वतंत्रता। ये सुनिश्चित करना, समानता और स्वतंत्रता, कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। फिर आप सोचते चले जाइए कि रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों की गई है, और दूसरे सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं, सब्सिडी क्यों दी जा रही है, तो आप पाएंगे कि कोशिश यही है कि किस तरीके से समान समाज की स्थापना की जाए, जिसे आप अब फिलॉसफी में चेंज कर दीजिए, पॉलिटिकल फिलॉसफी में या सोशल फिलॉसफी में, तो नाम समानता की जगह हो जाएगा समाजवाद, बस खत्म। तो आप देखें कि जब आप इन चीजों पर विचार करते हैं तो इस तरह से आपके दिमाग में मंथन शुरू होते हैं, फिर आप सिविल सर्विस के लायक अपने आप को कुछ न कुछ बना लेते हैं, और फिर अलग तरीके से लिख कर आने की गुंजाइश पैदा हो जाती है, राइट फ्रेंड्स। मैं आपको दो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा मित्रों। एक मैं आपको आज बिजनेस स्टैंडर्ड की एक क्लिपिंग दे रहा हूं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसमें दो प्रश्न उठाए हैं। पहला तो यह है कि इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहना ही नहीं चाहिए, इसमें बुद्धि का कोई मतलब लेन देन नहीं है, कोई मामला नहीं है, सीधे सीधे ये सांख्यिकी का मामला, स्टेटिस्टिक्स का मामला है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि हमें इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि ये हमारे रोजगार को कम कर देंगे, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बेस्ट से बेस्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी सामान्य व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती, और उसको उन्होंने अपने ढंग से सिद्ध भी किया है। इसके लिए एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपको एक रेफरेंस मिलेगा जो टेस्ला कंपनी, कार निर्माता कंपनी है, टेस्ला कार बनाती है, उसके जो हेड है बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है, मतलब अभी के उनको बेस्ट माइंड में से एक माना जाता है, शायद आपने नाम सुना हो, एलन मस्क। एलन मस्क ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, आपको ये रेफरेंस मालूम होना चाहिए, और आप चाहें तो आप इस रेफरेंस को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर जब आप उत्तर लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये एहसास होता है कि नहीं, ये जो स्टूडेंट है ये बातों को बहुत गंभीरता से लेता है और चीजों को बहुत गंभीरता से ध्यान भी रख कर अपनी बातें प्रस्तुत करता है। और एक मैं बहुत दोस्तों एक छोटा सा दूसरा जो आपको क्लिपिंग्स, दूसरी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान अखबार की है, प्लास्टिक के विकल्प के रूप में। इसमें सबसे बड़ी बात है कि दो देशों के नाम दिए हुए हैं, एक केन्या का नाम है कि वहां के लोग किस तरीके से अलग तरह के पेड़ लगा करके, खेती करके कहना चाहिए, और उस खेती की चीजों से बैग बनाने के काम में लगे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर ब्राजील और तंजानिया का भी दिया हुआ है, इसे आप पढ़िएगा और इसका रेफरेंस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखिए कि प्लास्टिक का अब जो मुद्दा है वो जोर पकड़ रहा है, तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लास्टिक से क्या संकट पैदा हो रहे हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। उपाय होने में एक तो सरकारी उपाय हो जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिनों पहले बैन लगा दिया पूरी तरह से, हालांकि बहुत से राज्यों ने बैन लगा दिया लेकिन बैन लगा नहीं पा रहे हैं, वो केवल कागजों में ही है। दूसरा यह कि पब्लिक क्या करे, तो आप रोज रेडियो में आप एडवर्टीजमेंट भी सुनते हैं, गुड ग्रीन डीड, वो एक है कि आप जन जागृति जागृत कर रहे हैं, दूसरा है कि और क्या उपाय हो सकते हैं, तो उन उपायों के रूप में आपको ये बहुत अच्छा अच्छे रेफरेंस का काम करेगा। मित्रों वक्त बहुत कम बचा है, अब मैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह पे आता हूं। इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, है ना, तो आपको हिंदी में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह भी पढ़ने को मिल जाएगा और नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह भी मिल जाएगा, न्यूक्लियर का जो भी अनुवाद जिसने किया हो। मित्रों इसके गठन के पीछे जो घटना थी वो भारत में घटित हुई थी। भारत ने, आपको मालूम है कि 1974 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो हमने राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा उसको नाम दिया गया था, परमाणु परीक्षण किया था। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया चकित रह गई। तो उनको लगा कि यार ये परमाणु निरस्त्रीकरण का मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे देश भी परमाणु हथियार बनाने लगेंगे तो फिर तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने एक बैठक की और उसमें एनएसजी का गठन किया। देखिए नाम है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, यानी कि इसमें वो देश हैं शामिल हैं जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो सारी चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होंगी परमाणु ऊर्जा से संबंधित? पहला तो रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, जैसे यूरेनियम थोरियम रॉ मटेरियल है। दूसरा क्या हो सकता है? मशीनें, उपकरण, मशीनें। मशीनों के बिना आप यूरेनियम का क्या कर लेंगे? चलिए आपके पास मशीन भी है और आपके पास यूरेनियम भी है तो आपको टेक्निक चाहिए, तकनीकी साइंस उसका चाहिए, कला चाहिए, तो टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने कहा कि इन पर हम नियंत्रण रखते हैं, यानी यूं कह लीजिए कि चूंकि आपूर्ति करता है तो इस रूप में नियंत्रण की मैं बात कर रहा हूं कि इनकी जो सप्लाई होगी दूसरे देशों को, जो चीज मिलेगी उस पर हम नियंत्रण कर लेते हैं। तो जब उन पर सप्लाई को ही हम अपनी निगरानी में ले लेंगे तो दूसरे जो देश है वो फिर परमाणु अस्त्र नहीं बना सकेंगे। तो इस तरीके से जो परमाणु निरस्त्रीकरण, जो परमाणु अप्रसार संधि है, उसको ही सप्लीमेंट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो ये 1974 में बकायदे उसके बाद बना और इसमें अभी 48 कंट्रीज हैं, 48 देश इसके सदस्य हैं। सिविल सर्विस के लिए आपका यह टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत बहुत समय से इसका सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत से देशों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है लेकिन अभी चीन अड़ंगा लगा रहा है। पिछले साल आपने सुना होगा कि चीन इस पर बहुत अड़ंगा लगा रहा है और अड़ंगा लगाने के पीछे उसका तर्क है, जो बाधा पहुंचा रहा है, वो कह रहा है कि जो भी देश इसके सदस्य हैं उन्होंने इससे पहले एनपीटी पर हस्ताक्षर किया हुआ है। एनपीटी का मतलब है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ है, तो भारत भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दे और इसका मेंबर बन जाए इस ग्रुप का। भारत ने, आपको मालूम है कि अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि अमेरिका, रूस ये देश है, इनके पास ऑलरेडी परमाणु हथियार है, चीन के पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान ने भी अभी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं परमाणु प्रसार संधि पर, भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। तो भारत का कहना है कि भाई हम इस रूप में रिस्क कैसे ले सकते हैं, लेकिन हम ये बात इंश्योर करते हैं कि हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हमेशा शांति और विकास के लिए करेंगे, राइट। चलिए, दूसरे देश भारत को इसके लिए सही मान रहे हैं लेकिन चीन कहता है कि नहीं, जब तक वो एनपीटी पर साइन नहीं करेगा उसे मेंबर नहीं बनाया जा सकता। जबकि भारत अपने तर्क देता है, कहता है कि भैया फ्रांस ने भी तो जब हस्ताक्षर किए थे, जब मेंबर बना था तब उसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो चीन तर्क देता है कि चलिए वो तो चूंकि शुरुआत की बात थी। इसके बाद फिर भारत दूसरे तर्क देता है कि जापान बना, अर्जेंटीना बना, ब्राजील बना, तब तक उन लोगों ने भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे तो हमने भी नहीं किए, हमको भी बनी, यहां तक कि चीन। तो उनको खैर उनकी काट होती है। अब देखते हैं कि चीन को समझाने की कोशिश कर रहा है भारत, मित्रों भारत क्यों बनना चाहता है, आई थोड़ा सा ये देख लेते हैं उसको क्या जरूरत है। ठीक है वो अपना काम करे क्योंकि हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, परमाणु परीक्षण हमने किया ही है, उसका कारण है। आप अक्सर देखते होंगे कि भारत के पास इसको लेकर के जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती वो नहीं है, जैसे यूरेनियम वगैरह भारत के पास नहीं है। अगर वो इसका मेंबर बन जाता है इस समूह का तो उसे जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो मिलने में सहूलियत हो जाएगी क्योंकि जो भी सप्लाई है इन चीजों की मैंने शुरू में बताया वो तो यही ग्रुप कंट्रोल करता है, तो भारत को आसानी हो जाएगी। दूसरा है कि परमाणु टेक्नोलॉजी भी उसे मिलने लगेगी, जो हायर टेक्नोलॉजी है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है। फिर यह भी होगा उसको फायदा कि इसका जो कच्चा माल उपयोग करने के बाद जो आप यूं कह लीजिए कि जो कचरा बचता है उसको समाप्त करने, उसके निस्तारण का बहुत बड़ा संकट है क्योंकि इससे रेडिएशन बहुत फैलता है। तो अगर इसका सदस्य बन जाता है भारत तो सदस्य जो दूसरे देश है उससे भी कचरे निस्तारण की भारत को मदद मिलने लगेगी। तो भारत इस सहूलियत की वजह से लगातार कोशिश में है कि वह इस ग्रुप का सदस्य बन जाए। तो मित्रों सिविल सर्विस की दृष्टि से मैं समझता हूं कि इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी डायरी में नोट हो जाना चाहिए। दोस्तों न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स के बारे में मैं बता ही चुका हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से 5 दोस्तों के नाम है राजेश कुमार चंडीगढ़ से, स्वाति, अमृतेश गुप्ता, अमरजीत कौर जलंधर पंजाब से और जयेश, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि शुरू में मैंने कहा, आज शुक्रवार है। दो दिनों के लिए अब आपसे इजाजत चाहूंगा अपनी शुभकामनाओं के साथ और इन शब्दों के साथ भी कि आपके जो दो दिन हैं बहुत ही खुशनुमा तरीके से बीते। नमस्कार।